लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। आलसी कहता है सिंह बाहर खड़ा है, सड़क पर निकलने पर वह मेरा वध करेगा। व्यभिचारिणी का मुंह गहरा गड्ढा है, जिस व्यक्ति पर प्रभु अप्रसन्न है वह उसमें गिरेगा। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। श्रोताओं, आलसी कभी भी दिल से काम नहीं करते। आलस्य के कारण वे शरीर से ही नहीं आत्मा से भी बर्बाद हो जाते हैं। कोई भी काम न करने का बहाना ढूंढते हैं। कठिनाइयों की कल्पना कर वे अपने वास्तविक कर्तव्यों से डरते हैं। आलसी आदमी को खेतों में काम करना होता है, लेकिन वह कल्पना कर लेता है कि वहां एक शेर है, जबकि यह उसका केवल एक बहाना मात्र होता है। वह दिखावा करता है कि वह सड़कों पर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि कोई न कोई उससे मिलेगा और उसे मार डालेगा। इसी तरह व्यभिचारिणी स्त्री बोलने में चतुर होती है। वह अपने गहरे गड्ढे जैसे मुंह से विनाश के शब्दों को उगलती है। ऐसी स्त्री की सूक्ति ग्रंथ में निंदा की गई है। ऐसी स्त्री की जो किसी को भी प्रलोभन में डालने से नहीं चूकती, जो घरों को फोड़ने में माहिर होती है। उसका मुंह एक गहरा गर्त है, जिसमें मूर्ख या आलसी आसानी से गिर जाता है। ऐसे व्यक्तियों से प्रभु अप्रसन्न रहते हैं जो आलसी होते, जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते और अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं। ईश नियमों को जानते हुए भी वे ईश नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों से ईश्वर अप्रसन्न रहते हैं। 22वें अध्याय के 14वें पद में नव युवकों को अशुद्धता की अभिलाषाओं के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। पराई स्त्रियों से दूर रहने में ही उनका कल्याण है। वे पराई स्त्रियों के मुंह से, उनके होठों के चुंबन से, उनके अधरों से निकले शब्दों के आकर्षण और प्रलोभन से दूर रहें। अपने नैतिक बल पर वे उनका सामना करें, अन्यथा वे खुद के लिए और अपने परिजनों के लिए एक गड्ढा खोदेंगे। वे ईश्वर से दूर हो जाएंगे और जीवन के उन नियमों को भूल जाएंगे जो हमारे समाज और परिवार की आधारशिला हैं। और फिर 15वें पद में लेखक कहता है, नव युवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई है, उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। श्रोताओं, नव युवक के हृदय में मूर्खता से अभिप्राय स्पष्ट है, क्योंकि जवानी में ही युवक युवतियां मूर्खता कर बैठते हैं। मूर्खतापूर्ण कार्य करने की उनमें आंतरिक प्रवृत्ति होती है। केवल कड़वे अनुभवों के बाद ही उनकी समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या किया है। अनुशासन और संयम बरतने के बाद ही अपनी गलतियों का पता लगता है, उसके लिए पश्चाताप होता है और गलतियों को सुधारने का मार्ग निकाला जा सकता है। मूर्खता उचित तरीकों और सौम्य तरीकों से बाहर नहीं निकाली जा सकती। इसमें सख्ती, गंभीरता और अनुशासन की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया कठोर होती है, किंतु व्यक्ति हिम्मत न हारे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु जिसे प्यार करते हैं उसे दंड भी देते हैं। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 16वें पद पर दृष्टिपात करें। यह इस प्रकार है, जो दरिद्र पर अत्याचार करता वह उसे लाभ पहुंचाता है, जो धनी को दान देता वह दरिद्र बनता है। यह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि अमीर लोग दरिद्रों को सताने के लिए कभी कभी बुरे रास्ते भी अपनाते हैं, किंतु इसका नुकसान खुद उन्हें भोगना पड़ता है, जबकि उत्पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित होता है। धनी लोग अपनी धन संपन्नता और विपुलता के बावजूद दरिद्रों को देने से कतराते हैं, जबकि अमीरों को देते हैं, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। वे गरीबों को राहत नहीं देंगे, बल्कि उन लोगों की खुशामद का प्रयास करेंगे जिनसे उनको कुछ लाभ मिलता है। वे वह देंगे जिसे वे अपने खर्चों का सबसे अनावश्यक हिस्सा मानते हैं, ताकि अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ा सकें। वे धनवानों को उपहार देंगे ताकि उनका सिर घमंड से ऊंचा रहे, वे दुनिया के सामने महान दिखें, और साथ ही जो कुछ उन्होंने दिया है उसे लाभ के साथ फिर से प्राप्त कर सकें। ऐसे दान देने वालों की सूक्ति ग्रंथ का लेखक निंदा करता है। श्रोताओं, इस स्थल पर मुझे संत लुकस रचित सुसमाचार में निहित प्रभु येसु के उपदेश का स्मरण हो आता है। इस सुसमाचार के 14वें अध्याय के 12वें और 13वें पदों में निमंत्रण देने वालों से प्रभु येसु कहते हैं, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न भाइयों को, न कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। आगे 22वें अध्याय के 17 से लेकर 29 तक के पदों में अन्य ज्ञानियों की सूक्तियां निहित हैं। 17वें और 18वें पद में लेखक कहता है, कान लगाकर ज्ञानियों के वचन सुनो, मेरी शिक्षा में मन लगाओ, क्योंकि यदि तुम उसे अपने हृदय में संचित रखोगे और वह तुम्हारे होठों पर विद्यमान रहेगी तो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। श्रोताओं, 17वें पद से लेकर सूक्ति ग्रंथ की शैली बदल जाती है। अब तक अधिकांशतः परामर्शों का सिलसिला जारी रहा और सैद्धांतिक सच्चाइयों को निर्धारित किया गया था, लेकिन यहां से लेकर 22वें अध्याय के अंत तक ज्ञानी अपने प्रभाषण को अपने बेटे, अपने शिष्य, अपने पाठक और श्रोता की ओर निर्देशित करते हैं। इन पदों में ज्ञान और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक गंभीर उपदेश दिया गया है। लेखक का आग्रह है कि हम लिखित और प्रचारित बुद्धिमान पुरुषों के शब्दों, भविष्यवक्ताओं और पुरोहितों के शब्दों और विशेष रूप से उस ज्ञान पर ध्यान दें जो अच्छे और बुरे के बीच विद्यमान अंतर को प्रकाशित करता है। वह इस तथ्य पर बल देता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों की बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। उनके मुख से निकले ज्ञान पर नम्रतापूर्वक कान देना और गंभीरता से झुकना चाहिए, जिसके लिए विनम्र हृदय की जरूरत होती है और जो ईश्वर पर विश्वास और पड़ोसी से प्रेम करने से आता है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, ज्ञानियों के वचन सुनो, क्योंकि यदि तुम उसे अपने हृदय में संचित रखोगे और वह तुम्हारे होठों पर विद्यमान रहेगी तो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और 22वें अध्याय के 19 से लेकर 21 तक के पदों में लेखक कहता है, मैं आज तुमको शिक्षा प्रदान करूंगा जिससे तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो। मैंने तुम्हारे लिए परामर्श और ज्ञान संबंधी सूक्तियों को लिपिबद्ध किया है जिससे तुमको सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो और तुम उस व्यक्ति को विश्वसनीय उत्तर दे सको जो तुमको भेजता है। श्रोताओ, ईश्वर ने जो उत्कृष्ट बातें लिखी हैं, जो नियम दिए हैं, वे उन आज्ञाओं के समान नहीं हैं जो मालिक अपने सेवक को देता है, क्योंकि वे केवल मालिक के लाभ के लिए होती हैं, बल्कि ईश्वर की आज्ञाएं उन आज्ञाओं के समान हैं जो गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को देता है और जो सभी के लाभ के लिए होती हैं। ज्ञानियों की बातें हमें ईश प्रदत्त नियमों का ज्ञान कराती हैं और प्रभु ईश्वर पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर हमारे मन में प्रभु पर श्रद्धा को जगाती है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुलाहट एक ईश्वरीय वरदान है। प्रत्येक वर्ष बुलाहट के लिए विश्व प्रार्थना दिवस हमें प्रभु के बुलावे के अनमोल उपहार पर चिंतन करने, उनकी प्रेमपूर्ण योजना में भाग लेने और सुसमाचार की सुंदरता को मूर्त रूप देने के लिए आमंत्रित करता है। बुलाहट के लिए विश्व प्रार्थना दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। संत पापा ने अपने एक संदेश में लिखा, पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रत्येक जन अपने छोटे स्तर से और जीवन की अपनी परिस्थिति में आशा और शांति के बीज बो सकते हैं। संत पापा ने विश्वासों को याद दिलाया है कि ख्रिस्त ईश्वर प्रदत्त बुलाहट को स्वीकार करने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे कि वे दुनिया में उनकी सेवा समर्पित जीवन के द्वारा, पुरोहिताई के द्वारा अथवा विवाह कर या अविवाहित रहकर कर सकें। पनामा के लाजास ब्लोंकास में एकत्रित अप्रवासियों के एक दल को प्रेषित संदेश में पोप फ्रांसिस ने अप्रवासियों को ख्रिस्त का चेहरा कहा है, जिन्हें कलीसिया प्यार से राहत और आशा प्रदान करती है। 21 मार्च को प्रेषित संदेश में संत पापा ने पनामा के लाजास ब्लोंकास में एकत्रित अप्रवासी दल को संबोधित किया। पोप ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ होने की इच्छा व्यक्त की और उनकी स्थिति के प्रति अपनी समझ प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं भी अप्रवासियों का बेटा हूं जो बेहतर भविष्य की तलाश में निकलते हैं। उन्होंने उन पुरोहितों एवं धर्माध्यक्षों को धन्यवाद दिया जो वहां उनका प्रतिनिधित्व करते और उनकी सेवा कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि वे माता कलीसिया के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने बेटों एवं बेटियों के साथ चलती है, जिसमें वे मसीह के चेहरे की खोज करते और वेरोनिका की तरह प्रवास के क्रूस रास्ते पर प्यार के राहत एवं आशा प्रदान करती है। पोप ने कहा कि अप्रवासी ख्रिस्त के पीड़ित शरीर को दर्शाते हैं जब उन्हें अपना देश छोड़ने, कठिन यात्रा के जोखिमों और कष्टों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता और जब उन्हें कोई अन्य रास्ता नहीं मिलता है। उन्होंने अप्रवासियों से अपील की कि वे अपनी मानवीय गरिमा को कभी ना भूलें और दूसरों की आंखों में देखने से ना डरें, क्योंकि वे कचरे नहीं हैं। पोप ने आश्वस्त किया कि वे भी मानव परिवार एवं ईश्वर के बच्चों के परिवार के हिस्से हैं। उन्होंने अप्रवासियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने रोम स्थित मरिया मेजर महागिरजा घर के लिए कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है। महाधर्मदश मार्गरिकस को महागिरजा घर का नया महापुरोहित नियुक्त किया है। और इसके पुरोहितों को प्रेरितिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों पर केंद्रित होने का आदेश दिया है। एक पत्र के साथ पोप फ्रांसिस ने मरिया मेजर महागिरजा घर के लिए नए नियमों को मंजूरी दी और एक नए प्रशासनिक परिषद की स्थापना होने तक नए मानदंडों को लागू करने के लिए सभी संकायों के साथ इसे महाधर्माध्यक्ष रोलांडिस मार्करिकस को सौंपा है। दिसंबर 2021 में असाधारण आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए महाधर्माध्यक्ष को सौंपे गए आयोग की प्रक्रिया के बाद पोप फ्रांसिस ने महागिरजाघर के निर्माण का कार्य पूरा किया है, जहां उन्होंने 100 से अधिक बार दौरा किया है और आशा करते हैं कि उनका दफन वहीं हो। वैटिकन राज्य सचिवालय के स्थानापक महाधर्माध्यक्ष एडगर पेना पारा ने एक दस्तावेज प्रकाशित कर पुरोहितों के नए कर्तव्यों, नए कानून और नए नियमों के दस्तावेज एवं महाधर्माध्यक्ष मार्करिकस के अधिकार एवं कर्तव्य के साथ उनकी नियुक्ति की रूपरेखा तैयार की है। अपने पत्र में संत पापा ने याद किया है कि ईश्वर के लोगों की अधिक भलाई के लिए महागिरजाघर को फिर से व्यवस्थित करने का काम एक विशेष आयोग की सहायता से महाधर्माध्यक्ष मार्करिकस को सौंपा गया था। सदियों से संत मरिया मेजर महागिरजाघर ने अपने खजाने की रक्षा की है, जैसे कि रोम की संरक्षिका माता मरियम की प्रतिमा एवं पौत्र चरणी के अवशेष, धार्मिक उत्सवों की सजावट की देखरेख और महागिरजाघर की तीर्थ यात्रा करने वाले विश्वासों का स्वागत। पोप ने लिखा, आज आयोग की प्रक्रिया के अंत में मैं पुरोहितों को किसी भी आर्थिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त करना उचित समझता हूं, ताकि वे पूरी तरह से और नए जोश के साथ तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक और प्रेरितिक सेवा के लिए खुद को समर्पित कर सकें। जहां दुनिया भर से लोग पश्चिम के पहले मरियम तीर्थस्थल की खोज कर रहे हैं, पोप ने जिन नियमों और कानूनों को मंजूरी दी है उनके बारे में उन्होंने कहा कि इससे प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के सिद्धांतों और मानदंडों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और महाधर्माध्यक्ष मार्करिकस को नए मानदंडों के परिनियमन एवं नियमों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक संकायों से सम्मानित किया गया है। पोप ने आगे आदेश दिया है कि नए महापुरोहित कानूनी प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे और सामान्य एवं असाधारण प्रशासन के कार्यों को करने की शक्ति बरकरार रखेंगे। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना नहीं हो जाती। वैटिकन न्यूज के पत्रकार जब तंजानिया की कलीसिया का दौरा कर रहे हैं, वे बतलाते हैं कि स्थानीय कैथोलिक कैसे अपने समुदाय से जुड़े हैं, खासकर रविवार मिस्सा बलिदान में, और परिवार पर स्थापित कलीसिया का निर्माण करते हैं। वे बतलाते हैं, तंजानिया की कलीसिया जवान और रंगीन है, यह न केवल गाती बल्कि सुर भी मिलाती है और इससे हर कोई जानता है। सुकामहेला की कलीसिया इसका एक सटीक उदाहरण है। इसकी एक विशेष वास्तुकला है। गिरजाघर का निर्माण फादर पीटर ने गांव के विश्वासों की मदद से बनवाया है। स्लोवाकिया में जन्मे धर्म प्रांत पुरोहित ने अपना जीवन सुकामहेला और उसके आसपास के लोगों के लिए समर्पित किया है और जब रविवार की प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित लोग उन्हें उत्सुकता से देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि फादर पीटर उनके लिए कोई अजनबी नहीं है। सुकामहेला में पौत्र मिस्सा समय पर शुरू नहीं होता। व्यस्त होने पर भी तंजानिया के लोग निश्चिंत होते हैं, उस समय भी जब दो अजनबी कैमरा के साथ उनके रविवार मिस्सा पूजा में भाग लेते हैं। पोप फ्रांसिस ने ब्राजील के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के तत्वाधान में ब्राजील में आयोजित सामाजिक सप्ताह के 6वें संस्करण के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए एक पत्र भेजा है, जिसका उद्देश्य है एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना, जहां विश्वव्यापी भाईचारा और सामाजिक मित्रता हो। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।